हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जब तक मेरे दिल में ये उम्मीद जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन मुझे नाउम्मीदी ने घेरा, शायद उस दिन मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। अर्णव बेहद संजीदा नजर आया, धृति अचरज भरी निगाहों से उसे तकती ही रह गई। अर्णव की इन बातों ने जैसे उसके शब्दों को हर लिया था। वो चाहकर भी कुछ कह न सकी, बस अपना चेहरा सामने की ओर घुमा लिया। बादलों के पीछे छुपा सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगा था। आकाश नीले, केसरिया और पीले रंग में रंग चुका था। दूर कहीं समुद्र की गहराइयों से सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा था। पंछियों की चहचहाहट का मधुर संगीत चारों ओर गूंज उठा था। अद्भुत दृश्य था, प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर था, जिसे दोनों खामोशी से अपनी निगाहों में बसा रहे थे। पंछियों की चहचहाहट में बहती हवाओं की सरसराहट और समुद्र की शोक लहरों की खिलखिलाहट खुलने लगी थी, पर उन दो दिलों में वीरानी फैली हुई थी। सूनी निगाहें खामोशी से प्रकृति के इस दिलकश दृश्य को निहार रही थीं। कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद दोनों वहाँ से निकल गए। कार में दिल दहला देने वाला सन्नाटा पसरा था। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। एक जगह आकर कार ठहरी और खिड़की से बाहर देखती धृति की निगाहें हैरानी से फैल गईं। उसने चौंकते हुए पलटकर अर्णव को देखा। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? धृति का सवाल सुनकर अर्णव ने पलटकर उसे देखा और हल्की मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। जब तुम अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी, तब लाया था तुम्हें यहाँ, ताकि इनका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए, और अब जब तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली हो, तो दोबारा लाया हूँ तुम्हें यहाँ, ताकि ये शुरुआत इनके आशीर्वाद के साथ करो, और एक सिफारिश भी करनी थी उनसे। इतना कहकर वो ठहर गया। धृति आंखों की पुतलियां खैलाए सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। पल भर ठहरने के बाद अर्णव ने आगे कहना शुरू किया। मैं तो तुम्हारे आगे के सफर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, पर तुम्हारी चिंता रहेगी मुझे, इसलिए इनसे एक फेवर मांगने आया हूँ कि जब तक मेरी अमानत मेरे पास नहीं लौट आती, वो तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारा ख्याल रखें। और एक वजह है तुम्हें लेकर आज यहाँ आने की। क्या? धृति ने बेताबी से सवाल किया और अर्णव की मुस्कान गहरी हो गई। मैंने सुना है कि इनसे जो मांगो मिल जाता है, तो आज उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी और तुम्हें मांगने आया हूँ। धृति टकटकी लगाए अपलक उसे देखने लगी। अर्णव की निगाहें भी उसी पर ठहरी थीं। कुछ देर में दोनों ने साथ में सिद्धिविनायक मंदिर में कदम रखा, पूजा की। धृति आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। अर्णव हाथ जोड़े कुछ पल उसे तकता रहा, फिर सामने की ओर चेहरा घुमाते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। धृति, ऐसी कोई जगह जहां तुम जाना चाहती हो, या कुछ ऐसा जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? कार स्टार्ट करते हुए अर्णव ने सवाल किया। धृति, जो कुछ देर पहले की उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, अर्णव का सवाल सुनकर चौंक गई। आज का दिन मैंने आपको दिया है, तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? धृति आंखों की पुतलियां फैलाए अचरज से उसे देखने लगी, जबकि उसका सवाल सुनकर अर्णव ने सहजता से जवाब दिया। क्योंकि अब तक सिर्फ अपनी मर्जी ही तो चलाता आया हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने तुम्हारी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तुम वो करती हो जो मैं कहता हूँ, मेरी पसंद का खाती हो, मेरे हिसाब से रहती हो। मैंने हर चीज के लिए सिर्फ तुम्हें फोर्स किया। कभी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पसंद नापसंद और किस चीज में तुम्हारी खुशी है, ये जानने की कोशिश ही नहीं की। पर आज अपनी ये गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए आज का आगे का दिन वही करेंगे जो तुम चाहोगी, वही जाएंगे जहाँ तुम जाना चाहोगी, वही खाएंगे जो तुम्हें पसंद होगा। अब बताओ, जाने से पहले ऐसी कोई जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो, या ऐसा कुछ हो करने की इच्छा हो तुम्हारी? धृति पल भर को स्तब्ध सी उसे देखती रही। बीता वक्त जहन में ताज़ा हो गया, चेहरे के भाव भी कुछ बिगड़े, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। ज्यादा कुछ तो नहीं, अगर लेकर चलेंगे तो अनाथाश्रम ले चलिएगा। ऑफिस में अपना कैबिन भी जाने से पहले एक बार देखना चाहती हूँ, उसके अलावा जहाँ आप चाहे ले चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मॉल जाएंगे, नाश्ते के बाद बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, वहाँ से अनाथाश्रम जाएंगे, दोपहर तक ऑफिस पहुँचेंगे और लंच वहीं करेंगे। अर्णव ने आधे दिन की प्लानिंग उसे बता दी, जिस पर धृति ने सहमति में सर हिलाते हुए हामी भर दी। जैसा कि तय हुआ था, यहां से सीधे दोनों मॉल पहुंचे, जहां फूड प्लाजा में दोनों ने धृति की पसंद से नाश्ता किया, शॉपिंग की और फिर अनाथाश्रम पहुंचे। आज भी वहां पहुंचकर धृति बच्चों के बीच खो गई और अर्णव दूर से ही मोहब्बत से उसे यूं निहारता रहा, जैसे उसकी छवि को अपने दिल में बसा रहा था। साथ ही धृति की नज़रों में आए बिना उसने उसकी कई तस्वीरें भी ले ली थीं। लंच के वक्त दोनों वहां से निकले। धृति फैशन शो के बाद पहली बार आज ऑफिस आई थी। पहले अर्णव की पीए की हैसियत से यहां काम किया करती थी, पर आज वो अर्णव के साथ उसकी वाइफ और इस ऑफिस की लेडी बॉस बनकर यहां आई थी। सारा ऑफिस स्टाफ बड़ी ही इज्जत से उसे ग्रीट कर रहा था। कबीर और माधुरी के साथ उन दोनों ने लंच किया। उसके बाद धृति तो अपने कैबिन में आई थी, जबकि अर्णव अपने कैबिन में चला गया था और अपनी चेयर पर बैठा बगल वाले कैबिन में मौजूद धृति को देख रहा था। धृति काफी वक्त बाद यहां आई थी। अपनी चेयर पर बैठकर सामने टेबल पर रखी चीजों को छू छू कर देख रही थी। काफी वक्त गुजारा था उसने यहां और बहुत कुछ नया सीखा भी था। यहीं से तो उसे खुद को साबित करने का मौका मिला था। धृति कुछ देर तक कभी लैपटॉप, कभी अपना नोटपैड, तो कभी बाकी चीजों को छू छू कर देखती रही, फिर उठकर उस ग्लास वॉल के पास चली आई। अर्णव अपने कैबिन में बैठा खामोशी से उसे तक रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम गया और जब लौटा तो धृति अपने कैबिन में नहीं थी। पहले तो अर्णव ने सोचा कि वॉशरूम गई होगी, इसलिए कुछ देर इंतजार किया, पर जब धृति नहीं आई तो उसके माथे पर बल पड़ गए। तेज कदमों से चलते हुए वो धृति के कैबिन में पहुंचा, जाकर बाथरूम चेक किया, पर वो खाली था और धृति वहां कहीं भी नहीं थी। चंद मिनटों में वो ऐसे बिना बताए कहां गायब हो गई। ये सोचते हुए उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं और माथे पर सिलवटें उभर आईं। टू बी कंटिन्यूड।